नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भूतानि तैः निजयोनि कर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र ह आत्मा प्रकृतौ अपि स्थितः तस्यः गुणैः अन्यतमः हि बध्यते भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो हि बध्यते भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो हि बध्यते भूतानि तैस्तैर निज जोनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो हि बध्यते। हरे कृष्ण। भूतानि तैस्तै निजजो निकर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः तत्रात्मा प्रकृतावपि स्थितः ताने जीवों के समस्त शरीर तय तय अपने अपने निज जोनी अपने शरीर उत्पन्न करके कर्म भी पूर्व कर्मों के द्वारा भवन्ति प्रकट होते हैं काले काल क्रम से न भवन्ति अदृश्य होते हैं सर्वशः सभी तरह से न नहीं तत्र वहां ह निसंदेह आत्मा आत्मा प्रकृतौ इस भौतिक जगत के भीतर अपि यद्यपि स्थितः स्थित तस्याः उस भौतिक शक्ति के गुणैः विभिन्न गुणों के द्वारा अन्यतमः अत्यंत भिन्न ही निसंदेह बद्धते बांधा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है किंतु वह उनसे बांधा नहीं रहता क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना होता है। अतएव वैदिक आदेश है कि भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देश दिए जाएं जिससे वह अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सके और बारंबार जन्म मरण के भवबंधन से छूट सके। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान तो सदा ही निर्देश देने के लिए तत्पर रहते हैं। दरअसल उनके निर्देश भगवद गीता में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि हम इन निर्देशों का लाभ उठाएं तो प्रकृति के नियमों से बद
रहकर भी हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करें तो ये हमारी जिम्मेवारी ले सक कर हमें बचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार भौतिक जीवन से छूटकर हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। ऐसी शरणागति के बिना मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार शरीर विशेष धारण करना पड़ता है, कभी पशु का तो कभी देवता का इत्यादि इत्यादि। यद्यपि शरीर यथा समय मिलता है और विनष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा वास्तव में शरीर में मिलता नहीं, अभी तो उस गुण विशेष के वशीभूत होता है जिससे वह पाप पूर्ण ढंग से जुटा रहता है। आध्यात्मिक शिक्षा से मनुष्य की चेतना बदल जाती है जिससे वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसंग आप लोग समझ रहे हैं, यह प्रवचन हिरण्यकश्यपु अपने स्वजनों के सामने दे रहा है। हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद उसके परिवार के लोग बहुत दुखी हो गए, खासकर उनकी माता दीति और हिरण्याक्ष के पत्नी पुत्र इत्यादि सभी लोग बहुत दुखी थे। तो उस दुखी अवस्था में अपने परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहा है, समझा रहा है कौन हिरण्यकश्यपु। तो उन्हें समझाते हुए बहुत से व्यवहारिक बात और बहुत सारे आध्यात्मिक बातों को भी कह रहा है, क्योंकि वो सब कुछ समझ रहा है, जानता है। और दरअसल में वह भगवान का पार्षद है, भक्त है, तो उसे जानकारी की कमी नहीं है। लेकिन सनकादिक के श्राप से वह अपने स्वरूप से विमुख होकर भगवत विरोधी भावनाओं में भरा हुआ है। इस सप्तम स्कंध में श्रीमद् भागवतम के एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा है। श्रीमद् भागवतम में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप कई बार सुने होंगे, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ऊति का वर्णन इस सातवें स्कंध में है। ऊति का अर्थ होता है कर्म वासना। ये 10 परिभाषिक शब्द हैं, सर्ग विसर्ग आदि। सर्ग का अर्थ भगवत सृष्टि जो भगवान के द्वारा की जाती है, जैसे प्रकृति पर दृष्टिपात करके भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति उनके संकल्प से गर्भवती होती है और महत तत्व आदि तत्वों को उत्पन्न करती है, यह है भगवत सृष्टि। और फिर उन महत तत्व को ब्रह्मा को प्रदान किया जाता है भगवान के द्वारा और उनको ज्ञान दिया जाता है। और इसके बाद जब ब्रह्मा से लेकर अब तक हम सभी लोग जो सृष्टि में विस्तार कर रहे हैं उसको विसर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग माने सृष्टि का विस्तार। सर्ग विसर्ग स्थान, स्थान का मतलब है संपूर्ण प्राकृत जगत की भौगोलिक स्थिति, अथवा एक जगह से भगवान संपूर्ण विश्व को अनेक भुवन, अनेक लोक लोकांतर के रूप में विभाजन करके उसमें शासन करते हैं, जीवों का पालन रक्षा इत्यादि करते हैं, उसको स्थान कहते हैं। और पोषण का अर्थ है कि सभी जीवों का एकमात्र पालन करता भगवान है, पोषण करते हैं। तो पोषण भी 2 प्रकार का होता है, एक जनरल पोषण, एक स्पेशल पोषण। सबके नाकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई, सबके लिए सूरज की व्यवस्था, सबके लिए धरती में अन्न जल इत्यादि, ये सामान्य पोषण है। और अपने भक्तों के लिए विशेष टेक केयर करते हैं उसको स्पेशल पोषण कहते हैं। तो भागवत के अलग अलग स्कंदों में इन विषयों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग का वर्णन मुख्य रूप से तीसरे चौथे स्कंद में और पांचवें स्कंद में स्थान का वर्णन है भूगोल का, छठवें स्कंद में पोषण का वर्णन है और पोषण के बाद उति। उति मतलब कर्म वासना, सबका परिभाषा सद गोस्वामी लिखे हैं, उतयः कर्म वासना। जीवों के अंदर कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने की जो भावनाएं हैं उसको कहते हैं वासना, कुछ चाह है, कुछ डिजायर इच्छा, कुछ मन में भोग की वासना है, उन वासनाओं को ये उति कहते हैं। तो उति भी तीन प्रकार की है, एक सद वासना, एक असद वासना और एक मिश्र वासना। तो सद वासना मतलब केवल भगवत भावना, भगवान की इच्छा, भगवान के सानिध्य में रहना, भगवान के गुणों को गाना, भगवान की सेवा करना, इसकी जो जिसे इच्छा है उसको सद भावना या कृष्ण भावना भावित कहते हैं। तो एक सद भावना वाले लोग होते हैं और ठीक इसके विपरीत असद वासना, भगवान नहीं चाहिए बाकी सब कुछ चाहिए, सारे संसार के भोग चाहिए, उसको असद वासना कहते हैं। और फिर मिश्र वासना, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ अध्यात्म भी चाहिए कुछ प्राकृतिक भोग भी चाहिए। तो सातवें स्कंद में इन तीनों के लिए पांच पांच अध्याय दिया गया है। प्रारंभ में असद वासना के लिए पांच अध्याय है और बीच में सद वासना के लिए और पांच अध्याय लास्ट में मिश्र वासना के लिए। बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसको रखा गया है। यह है उतयः कर्म वासना। तो असद वासनाओं का नेतृत्व करते हुए हिरण्यकश्यपु के चरित्र का वर्णन करते हैं देवर्षि नारद, किस तरह से भगवान को रिजेक्ट करके सब कुछ चाहता है, इसको पांच अध्याय में वर्णन करते हैं और उसी क्रम में सद वासना की भूमिका भी तैयार हो जाती है। उस भूमिका के रूप में प्रहलाद महाराज के व्यवहार स्वभाव का वर्णन और इसके बाद छठवां अध्याय से दसवां अध्याय तक प्रहलाद महाराज के सद वासनाओं का वर्णन, किस तरह से अपने साथियों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, किस प्रकार उनके रक्षा के लिए भगवान नृसिंह देव का प्राकट्य होता है, उनके गुणों की स्तुति करते हैं और राज्याभिषेक आदि, ये सब सद वासना। और उसी क्रम में महाराज युधिष्ठिर जब सुन रहे थे देवर्षि नारद के मुख से राजस्वीय सभा में सब कथाएं, तो वहीं पर मिक्स वासना वाले लोगों के विषय में भी जिज्ञासा कर दी है, जो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, वर्णाश्रम धर्म आदि, स्त्री धर्म, जति धर्म, ये सब जो नैमित्तिक धर्म है वो मिश्र वासना वाले हैं, जो नित्य धर्म में है, जो अपने स्वरूप धर्म में है वो सद वासना वाले हैं, लेकिन किसी निमित्त से, किसी कारण से जो धर्म का आचरण करते हैं, उनको कुछ चाह है, वो मिश्र वासना वाले हैं इत्यादि, इस तरह से वर्णन हुआ है। तो अभी असद वासना का नेतृत्व करते हुए हिरण्यकश्यपु के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। वह हिरण्यकश्यपु संसार के सभी भोगों को चाहता है और उसी क्रम में वर्णन करते हैं देवर्षि नारद के, उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान वराह देव के द्वारा मारा गया। इसके बाद उसके परिवार के लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे, तो उन लोगों को आश्वासन देते हुए, एक आश्वासन के लिए क्लास लिया है, उनको समझा रहा है। तो समझाते हुए बहुत सारे व्यवहारिक और आध्यात्मिक उदाहरण भी दे रहा है। उसी क्रम में एक सुजग्य नामक राजा था, उसकी मृत्यु हो गई अचानक, शत्रुओं द्वारा वह मार दिया गया जैसे भी, तो उसकी पत्नियां, उसके कुटुंब वाले बहुत रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो उनके रोने से वो बहुत कोलाहल मच गया था राजधानी में, सभी लोग दुखी थे और उनके रोने का चित्कार जमराज को भी सुनाई दिया, जो कि सबके मृत्यु के नियंता हैं, सबके कर्मों का फल देते हैं, खास करके बुरे कर्मों का, नरक के स्वामी हैं जमराज, तो जमराज को भी विचित्र लगने लगा कि ये लोग इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान में है, इसको हिरण्यकश्यपु बतला रहा है। तो स्वयं जमराज बालक बनकर वहां आ गए और सुजग के कुटुंब वालों को, पत्नियों को, बड़े बूढ़ों को समझा रहे हैं। तो जमराज का ये प्रवचन है जो साक्षात द्वादश महाभागवत में एक है। जमराज का प्रवचन भागवत में दो जगह आया है, यहाँ सुजग के पत्नियों को समझाते हुए और छठवें स्कंद में अपने परिकरों को समझाते हुए, अपने दूतों को समझाते हुए अजामिल प्रसंग में। ये द्वादश महाभागवत जिनका नाम जमराज ही लेते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैया सखी वयम, तो उसमें अपना लास्ट में नाम रखते हैं वयम, हम लोग, मैं भी। इन बारहों महाभागवतों का प्रवचन भागवत में है जगह जगह पर। संपूर्ण भागवत का प्रवचन तो वैया सखी करते हैं सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव का प्रवचन है, देवर्षि नारद का प्रवचन है, ब्रह्मा जी की मंतव्य है, सबका है, सनकादि का, भगवान कपिल का, सबका जगह जगह पर। तो भगवान जमराज जो स्वयं भगवत तत्वेताओं में एक हैं, द्वादश महाभागवत ही भगवान को जानते हैं, एकदम आज इट इज हू बहु नहीं, लेकिन ज्यादा यही जानते हैं, ज्यादा तो कोई नहीं जानता। भगवान अपने विषय में केवल भगवान ही जानते हैं, और जब वह किसी को बताते हैं तब कोई जानता है। जमराज जी अपने दूतों को समझाते हुए कहते हैं, ये जीव और भगवान के बीच का जो कर्तव्य है, धर्म है, इसका निर्धारण स्वयं भगवान किए हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान इसका निर्माण किए, स्थापना किए हैं, और वही जिसको जनावे वही जानता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत या देवता, मनुष्य, कोई नहीं जानता है। तब जमदूत बड़ा चकित हो गए कि जब कोई नहीं जानता है तो ये धर्म का क्या मतलब है, तब कैसे कोई पालन करेगा। तो कहते हैं, हाँ जानते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग जानते हैं, 12 लोग, और उनके द्वारा सुनकर और लोग भी जान जाते हैं, तो इसी क्रम में नाम रखते हैं। तो यहाँ भले हिरण्यकश्यपु के मुंह से प्रवचन हो रहा है, लेकिन भगवान जमराज का मंतव्य है। भगवान जमराज जो भागवत धर्म के वेता हैं, तत्वेता हैं, तो वह प्रवचन कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रमाणों के साथ समझा रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि आप लोग हमसे उम्र में बड़े हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। जो जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा, और ऐसा नहीं कि कहानी खिसा है, आपकी मर्जी विश्वास करें या न करें, रोज रोज व्यवहार में देखा जाता है। ये रोज देखते हैं कि लोग मरते हैं फिर भी आप लोग इस तरह से शोक कर रहे हैं, लगता है कि रोकर इसको जीवित कर देंगे। बहुत सारी बातें कहते हैं अनेक श्लोकों में। तो इस जगत की रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला दूसरा कोई ईश्वर है, वह अपने मर्जी से जगत को चलाता है, बीच में हाय हाय करने से कुछ होने वाला नहीं है, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। बहुत सारी बातें बताए, फिर इस श्लोक में कहते हैं कि भूतानि तैस्तै निजोनि कर्म भी भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृता वपि स्थितः तस्या गुणैर अन्यतमो हि बध्यते। जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करता है, कुछ उसके कर्म होते हैं, उस कर्म के अनुरूप उनको शरीर मिलता है, और शरीर एक फिक्स स्थिति में मिलता है, कितने दिन तक रहना है, किस शरीर में रहना है, कब तक रहना है, और जब उसका कर्म पूरा हो जाता है तो शरीर भी पूरा हो जाता है, फिर वह दूसरे शरीर में जाता है। और इस प्रकार शरीर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, आत्मा अपने स्थिति में ही रहता है, लेकिन शरीर बदलते हैं, क्योंकि शरीर से आत्मा बिल्कुल भिन्न वस्तु है। आत्मा नित्य चिन्मय भगवत अंश है और शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ जड़ांश है। भौतिक प्रकृति के तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। यद्यपि शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, और इनमें 8 तत्व लगे हैं, 5 स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म हैं, जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति अम्मे भीना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति के 8 तत्व हैं, और जब तक व्यक्ति इस प्राकृत जगत में रहता है तब तक उनको इन 8 तत्वों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो अंदर बनियान पहन लेते हैं, इसके बाद फिर कुर्ता पहन लेते हैं, फिर और भी कुछ कोट वोट पहन लेते हैं तरह तरह के, वैसे आत्मा का भी प्राकृत जगत में 2 कपड़ा मिला है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो सूक्ष्म शरीर एक बार दे दिया जाता है इस प्राकृत जगत में, और वो तब तक रहता है जब तक जीव इस प्राकृत जगत से मुक्त नहीं हो जाता, और ये स्थूल शरीर बदलते रहते हैं, कभी कुत्ता के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी गाय के शरीर में, कभी आदमी के शरीर में, कभी सुअर के शरीर में, बदलता रहता है। लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो ये आत्मा के साथ रहता है, कब तक, जब तक वह इस प्राकृत जगत को पार नहीं कर जाता तब तक। लेकिन उसे याद नहीं रहता, उसके मन में स्मरण नहीं रहता कि हमको पहले सुअर का शरीर मिला था या गधा का शरीर मिला था, नहीं याद रहता है। उनको 2 तरह से याद कराया जाता है, एक भगवान की कृपा से और नहीं तो जमदूतों के द्वारा। जब कभी वह नरक का कैंडिडेट हो जाता है तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा को जमदूत ले जाते हैं नरक में, और वहां नरक के जातनाओं को भोगने के लिए, दुख भोगाने के लिए उनको एक स्पेशल शरीर देते हैं, जातना शरीर, जैसे लेबोरेटरी में या किचन में काम करने के लिए एक अलग से कपड़ा पहन लेते हैं, कभी हल्दी मसाला छीटा न लगे, चाहे कुछ एसिड आदि न लगे, इसके लिए अलग कपड़ा पहनते हैं। वैसे ही उस आत्मा और सूक्ष्म आत्मा मन बुद्धि के साथ जो आत्मा का छोटा शरीर है उसको एक जातना शरीर दिया जाता है, और जातना शरीर जमदूतों के द्वारा दिए गए जातनाओं से भी मरता नहीं है, लेकिन कष्ट की अनुभूति होती है, और उसको 10,000 वर्ष नरक में रहना है तो 10,000 वर्ष रहेगा लेकिन कष्ट की अनुभूति करेगा। और जमदूत उससे पूछते हैं, उसके साथ जो अहंकार है, मन है और बुद्धि है जो स्थूल शरीर को चलाता है, उससे पूछते हैं, तुमको याद है तुम इस स्थान पर इस टाइम में यह पाप किया था? तो हाँ बेटा, इसका मजा यह है, चल तू मांस खाया था ना, मांस को तल कर खाया था, तो चलो तुमको भी पकौड़ी की तरह छानेंगे। जलने का अनुभूति होता है लेकिन मरता नहीं है, पहाड़ के ऊपर से गिराते हैं, शरीर में चोट की अनुभूति होती है लेकिन मरता नहीं है, यह है जातना शरीर। तो उस समय याद दिलाते हैं जमदूत, तब याद आता है हाँ। और कभी कभी भगवत कृपा से माता के गर्भ में भी अथवा भगवान के भक्ति के प्रभाव से पीछे के कर्मों का स्मरण होता है, जैसे भागवत में अनेक उदाहरण है, राजर्षि भरत भजन किए लेकिन भजन पूरा नहीं हो पाया, बीच में ही एक हरिण में आसक्ति होने से हरिण शरीर लेना पड़ा, बाद में ब्राह्मण शरीर लिए, और जब महाराज रहुगण के साथ उनका संवाद हुआ तो उस समय भी उनको याद था कि मैं राजर्षि भरत था, अहम पुरा भरतो नाम राजा, अपनी कथा कह रहे हैं। या देवर्षि नारद अपने विषय में व्यास देव से कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था। भक्ति के प्रभाव से भी पूर्व जन्म की बातें याद आती है भगवान की कृपा से, लेकिन इस शरीर परिवर्तन में भगवान हेतु नहीं है। यह स्पष्ट इस श्लोक में कहा गया है कि अपने कर्म के अनुसार जीव विविध शरीर लेता है। भूतानि तैतै निजजो निकर्म भी, अपने कर्मों के अनुसार जीव, भूतानि मतलब जीव समूह, ये जीव के शरीर मिलते हैं। भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः, यह शरीर मिलता है और अदृश्य हो जाता है। भवन्ति भवन्ति माने प्रकट होना, न भवन्ति मतलब नष्ट होना। तो ये प्रकट भी होता है और नष्ट भी हो जाता है शरीर। न भवन्ति भवन्ति काले, समय से यह आता है और फिर न भवन्ति सर्वशः और अप्रकट भी हो जाता है। न तत्र आत्मा प्रकृता उपस्थित, इस प्रकार वह भौतिक जगत के सुख दुख का अनुभव करता है शरीर प्राप्त करके, लेकिन इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आत्मा का कोई कर्म नहीं है। यह जीवात्मा का, इस आत्मा का इस प्राकृत जगत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह विवश हो गया है इन दुखों को, इन कष्टों को भोगने के लिए अपने कर्मों के अनुसार। प्राकृत वस्तुओं से इसका कोई लगाव नहीं है, फिर भी उसे प्रभावित हो जाता है अज्ञान वश। तस्या गुणे अन्यतमो ही बद्धते, फिर भी वह इस भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न होते हुए भी वह भोगता है अज्ञान के कारण, और उसे दुख की अनुभूति होती है, उसे कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि वह देह को ही अपना स्वरूप मान लेता है मूर्खतावश। जैसे आपके शरीर पर कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन एक ब्लेड लगाकर आपके कुर्ता को फाड़ दिया, इसे आपके चमड़े में शरीर में कोई खरोच तक नहीं आया, लेकिन कुर्ता फाड़ दिया तो इससे आपको कष्ट होता है। क्यों? कि मेरा कुर्ता है। चलो मेरा भी बहुत ज्यादा अज्ञान नहीं है, मेरा है निश्चित अज्ञान है, लेकिन मैं कुर्ता हूं यह आप विचार कीजिए कितना बड़ा अज्ञान है। कम से कम इतना भी मानना कि मेरा है, यह भी अज्ञान है, यह भी मूर्खता है। लेकिन कहीं यह मान ले कि हम कुर्ता हैं, तब तो कितना जड़ बुद्धि है। उसी प्रकार आत्मा इन सूक्ष्म शरीर से भी अलग है, और इसके साथ भौतिक शरीर, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ ये स्थूल शरीर, इसी को वह मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इस चक्कर में छह छह घंटा बैठकर क्रिकेट मैच देखता है। हम भारतीय हैं, भारत को जीतना चाहिए। अभी बतलाइए कितना बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान का फल तो निश्चित आत्मा को भोगना पड़ेगा, इसके कारण भोगता है और दुखी हो जाता है। कहीं कुछ होता नहीं, पाकिस्तान जीते या भारत जीते, व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ नहीं मिला, न कुछ हानि हुई, लेकिन मान्यता के कारण कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितने लोगों को हार्ट फेल कर जा सकता है, हमारी इंडिया हार गया, ये देखो मूर्खता, इसकी कोई सीमा है? उसी प्रकार जीवों को कष्ट होता है। भगवान कपिल कहते हैं कि तीसरे स्कंद के तीसवें अध्याय में तीन नंबर का श्लोक है कि यद ध्रुवस्य देहस्य शानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्नते मोहात गृह क्षेत्र वसूनि च। यद अध्रुवस्य देहस्य, यद अध्रुवस्य, अध्रुवस्य माने टेम्पररी, ये ध्रुव नहीं है, ये शरीर जो है परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, अध्रुव है। लेकिन अध्रुवस्य देहस्य, इस टेम्पररी देह के लिए व्यक्ति आसक्ति के कारण इसको अपना मान लेता है, और फिर सानुबंधस्य दुर्मति, और देह से जितने संबंधित पदार्थ हैं अपनी मूर्खता बस दुर्मति कह रहे भगवान कपिल देव। वह दुर्मति, वह मूर्ख, वह बोका अपने शरीर को अपना मानने के कारण क्या होता है, ध्रुवाड़ी मन्यते मोहात, इस अज्ञान के कारण ध्रुव मानता है। किसके किसको ध्रुव मानता है, पहले तो देह को ध्रुव मानता है, और देह से संबंधित गृह, घर, क्षेत्र, खेत और बसुनी माने धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, सबको नित्य मान लेता है। और उस नित्य मान्यता के कारण उसको कष्ट होता है। अगर कोई पैसा छीन लिया तो दुखी हो जाएगा, कोई खेत पर कब्जा कर लिया तो दुखी हो जाएगा, कोई मकान छीन लिया तो दुखी हो जाएगा, अब उस टेंशन में हो जाता है। इस मूर्खता के कारण वह दुख सहता है, कहते हैं। और यह होता है, फिर एक विशेष विज्ञान इसमें है कि आखिर ये सब होता क्यों है, क्यों जो अध्रुव है, अनित्य है, उसको हम नित्य मानते हैं। अगर कोई अपना निकट का संबंधी की मृत्यु हो गई तो हाय हाय करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता है कि उसको मरना नहीं चाहिए, वह अध्रुव रहे, ध्रुव रहे, वह कभी मरे नहीं, मूर्खता के कारण हम सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह प्रियता, यह आसक्ति, यह आत्मीयता का विस्तार इतना क्यों हो जाता है? तो इसको हमारे आचार्य लोग बतलाए हैं कि प्रियता इन भौतिक पदार्थों में नहीं है, प्रियता वास्तव में आत्मा में है। आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है, और वह भी आत्माओं के आत्मा जो परमात्मा है, महान आत्मा है श्री भगवान, वह प्रिय है। भागवत में अनेकों जगह पर कहा गया है वह प्रिय है, वह हमारे सुहृद हैं, वह निकटतम है। प्रहलाद महाराज जब कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह उपदेश चालू किए, तब असुर बच्चे मानो पूछे कि क्यों, क्या कारण है कि हम बचपन में भजन करेंगे, भागवत धर्म का आचरण करना क्यों जरूरी है? बतला तो दिए शरीर अनित्य है, कभी भी समाप्त हो जाएगा, पता नहीं यह दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ शरीर भी कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इतना से असुर बच्चों को संतुष्टि नहीं हुई, कहे कि शरीर ध्रुव रहे चाहे परमानेंट रहे, भजन क्यों करें? मान लो कि शरीर ध्रुव है, अध्रुव है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम, कहते हैं एक तो दुर्लभ है, तो एक तर्क किया जा सकता है कि दुर्लभ गाय के लिए है, बैल के लिए है, घोड़ा गधा के लिए, हमको तो मिल गया ना, हमको क्या दुर्लभ है? दुर्लभ तो दूसरे शरीर वालों के लिए है, कठिनाई से मिलता है, लेकिन जो जिसको मिल गया उसको क्या दुर्लभ है? तब कहते हैं कि अध्रुवम, पर भरोसा नहीं है कब खत्म होगा। अच्छा, और अर्थदम, यह अर्थ देने वाला है, इसलिए भागवतान धर्मान आचरित, भागवत धर्म का आचरण करो। तो कहते हैं ठीक है, वह ध्रुव है चाहे परमानेंट है, कोई मतलब नहीं, लेकिन भजन क्यों करें? तब आगे कहते हैं, जथा ही पुरुषस्य ह, यही पुरुषों के लिए, जीवों के लिए कर्तव्य है। क्या? विष्णु पादोपसर्पणम, भगवान विष्णु के चरणों की शरणागति। क्यों प्रहलाद, आखिर बताओ क्यों? तब कहते जत एसह, प्रहलाद महाराज अनुभव करते थे वो सर्वत्र हैं, कहते एसह, मानो उंगली से दिखा कर कहते एसह, जो सबके शरीर में रहते हैं परमात्मा रूप से, सर्व भूतानाम, सभी जीवों के साथ रहने वाले भगवान, प्रिय आत्मा, ईश्वर सुहित, चार विशेषता बतलाते हैं। वे सबके प्रिय हैं, वह आत्मा है, ईश्वर है और सुहृद है। यह विशेषता है भगवान का भजन करने का। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का भजन करना चाहिए सनातन। बहुत 2 महीना उपदेश किए तो कहते हैं क्यों भजन करना चाहिए? कहते भक्त वत्सल्य कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। कृष्ण भक्त वत्सल हैं, कृतज्ञ हैं, समर्थ हैं, वदान्य हैं। ऐसे कृष्ण को छोड़कर कोई भी बुद्धिमान दूसरे का भजन नहीं करेगा। यदि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के गुणों का ज्ञान हो जाए तो सर्वतज भजे ताते उद्धव प्रमाण। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्वतज भजे ताते उद्धव प्रमाण। अगर किसी बुद्धिमान को यह पता चल जाए कि कृष्ण हमारे निकटतम सुहृद हैं, कृतज्ञ हैं, थोड़ा सा किए हुए सेवा को भी ज्यादा मानते हैं, वे हमारे निकटतम बंधु हैं, तो कृष्ण को छोड़कर किसी के पास नहीं जाएगा। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्वतजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। उद्धव जी का एक प्रमाण है, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कौन ऐसा दयालु है? अगर यह कोई जान जाए कि पुतना जैसी राक्षसी को केवल मातृ रोल प्रदर्शित करने से प्रसन्न हो गए तो कौन ऐसा बुद्धिमान है कि उनका भजन नहीं करेगा। वास्तव में लोग अज्ञान बस भगवान का भजन नहीं करते हैं, जान जाएंगे तो निश्चित करेंगे। रामचरितमानस में भगवान शिव राम कथा सुना रहे हैं अपनी पत्नी को, उमा को, पार्वती जी को। तो कथा कहते 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 हैं, उमा एक बात बताऊं, अगर सचमुच कोई भगवान के गुणों को जान जाए ना तो कोई काम नहीं करेगा, केवल भजन करेगा। नहीं जानने के कारण लोग दूसरे कामों में मर रहे हैं। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तज भाव न आना। हे उमा, राम के स्वभाव को जो जान जाएगा ना वो केवल भजन करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से यह जानना जरूरी है कि सर्वभूतानाम प्रिय, सभी जीवों के प्रिय हैं। परीक्षित महाराज जब प्रश्न किए प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी से कि एक म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको निश्चित मरना है उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए उनके प्रश्न से। इतना प्रसन्न हो गए कि मंगलाचरण करना भी भूल गए। कहते हैं, बरिया ने सत्य प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। हे राजन, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है जगत के हित के लिए। कहते हैं, वास्तव में अज्ञान बस लोग जब से जगे होते हैं सो नहीं जाते, तब तक तो कुछ न कुछ बकबक करते हैं, कुछ न कुछ सुनते हैं, सोचते रहते हैं, और इस संसार में इतना आसक्त होते हैं कि एक दूसरे को मरते हुए देखकर भी नहीं विचार कर पाते कि हमें भी मरना है, हम भी उसी लाइन में हैं। इन सब बातों पर विचार करके तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। कहते हैं, इसलिए प्रत्येक म्रियमाण व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। वहां भी चार विशेषता बतलाते हैं सुखदेव गोस्वामी। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो वहां सर्वात्मा का अर्थ, आत्मा का अर्थ प्रियता से किया गया है, कई आचार्यों ने किया है। आत्मा माने प्रिय, क्यों उनका स्मरण करें, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े प्रिय वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, और उन प्रिय व्यक्ति के अंश होने के कारण जीवात्मा प्रिय है, आत्मा प्रिय है। हम अपने सगे संबंधी मित्र दोस्त सबसे प्रेम करते हैं, ठीक है, अपने स्त्री से, बच्चे से, भाई से, जाति से सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन सबको अपना शरीर बहुत प्रिय है। इसके बाद भी अगर अचानक इस भीड़ में कोई विषधर सर्प आ जाए तो कोई किसी को नहीं ध्यान देगा कि इसको बचाया, अकेले भागेगा। तो इस स्थिति में आत्मा के उपस्थिति से शरीर प्रिय, प्रियता का पोल पट्टी तब खुलता है जब आत्मा शरीर से निकल जाता है। आत्मा के उपस्थिति से शरीर प्रिय है, इस विज्ञान को समझना चाहिए। प्रिय वस्तु आत्मा है, और वह जब इस शरीर में आता है तब शरीर प्रिय हो जाता है, और उस प्रियता का व्यापार कैसे बढ़ा है। यह शरीर जिस परिवार में आया वो परिवार प्रिय हो जाता है, वो माता पिता प्रिय हो जाते, वो जाति प्रिय हो जाता है, वो देश प्रिय हो जाता है आत्मा की उपस्थिति से। और जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाता है तो जिस शरीर में रहा है वह शरीर ही अप्रिय नहीं होता दूसरों के लिए भी, चाहे वह राष्ट्रपति का शरीर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का, या घर के गार्जियन का, या अपने बाप का, या बेटा का, किसी का। आत्मा के निकलते ही वह अप्रिय नहीं होता, बस यही सबकी भावना होती है, इसको जल्दी जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए, क्या हो गया, इतना प्रेम करते थे, इसको 10-20 दिन रखो ना, यही शरीर था ना। आगे यमराज जी कहेंगे कि जिसको तुम लोग देख रहे थे वो तो यही है ना। सुजग्यो नन्वयम सेते मूढ़ा यमनु सोचता यह सोता ये अनुभक्ते सचा न दृश्यते कर ही चित। अरे शोक तुम किसके लिए कर रहे, अरे मूर्खों, जिस सुजग व्यक्ति के लिए तुम शोक कर रहे हो वह तो यही पड़ा है, देखो उसका हाथ, उसका पैर, उसका नाक, उसका मुंह, वही है ना। कहते हैं ना, उस समय हम जो बोलते थे तो ये जवाब देते थे, अब नहीं दे रहे हैं, हमारे बोलने पर इस हमारे बातों को सुनते थे, अब नहीं सुन रहे हैं। तो कहते हैं जो जवाब देता था, जो बोलता था, वो तो उस समय भी नहीं दिखाई देता था। यह श्रोता ये अनुभक्ते है, जो तुम्हारी बात सुनता था और जवाब देता था, अगर तुम मानो कि कान सुनता था तो कान यही है, मुंह बोलता था तो मुंह यही है, जीभ यही है, और फिर कहते हैं नहीं, तब कौन बोलता था, जिसको तुम कभी नहीं देखा वह न स न दृश्यते न कर ही चित, जिसको तुम कभी नहीं देखा वह, तो तुम पहले भी जिसको नहीं देखे, आज भी नहीं देखे, नहीं देख रहे हो, तो फिर शोक किसके लिए कर रहे हो, विचार करो ना, किसके लिए शोक कर रहे हो। जिसको तुम देख कर कहते थे सुजग्य है, राम है, ए फलाना है, चिलाना, दुनिया भर का नाम रखते थे, वो तो यही है, फिर भी तुम लोग शोक कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, जिसको कभी नहीं देखा उसके लिए। तो अब समझ में आया ना कि तुम्हारा जवाब देने वाला, सुनने बोलने चलने वाला दूसरा था, ये तो केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र है। खूब फर्स्ट क्लास के कार रोड पर खड़ी है लेकिन दौड़ नहीं सकती अपने से, फर्स्ट क्लास इंजन है, तेल है, सब है। जब उसमें चेतन आत्मा युक्त कोई ड्राइवर नहीं आ जाएगा तब तक नहीं दौड़ सकती, जब ड्राइवर आता है तब चलती है। उसी प्रकार ये शरीर केवल यंत्र मात्र है, उसके भीतर आत्मा है, तो उसको समझा रहे हैं। तो इस प्रकार उसके उपस्थिति से, आत्मा के उपस्थिति से शरीर प्रिय होता है, और शरीर के साथ शरीर के संबंधी प्रिय होते हैं, अपना घर मकान सब प्रिय होता है। तो भगवान कपिल कहते हैं कि मूर्खता बस, दुर्मति लोग, मोह बस, ये सब मान लेते हैं, प्रियता का इतना विस्तार करते हैं। वास्तव में प्रिय आत्मा है, और आत्मा से भी प्रिय परमात्मा है भगवान ईश्वर हरि, इसलिए उनके विषय में सुनना बोलना चाहिए। तो और जीव निश्चित रूप से भले भीड़ भाड़ समाज दिखाई दे, लेकिन वो अपने कर्मों का व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी है, उसको भोगना पड़ेगा। भागवत में सैकड़ों श्लोक में बातें कही गई हैं, जहां तहां एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलियते एको न भुक्ते सुकृतम एक एवं च दुष्कृतम। जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, अकेले अपने कर्मों का फल भोगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एक ही पिता के कई पुत्रों में कोई बचपन से ही पोलियो से ग्रस्त हो जाते हैं, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई बहुत स्वस्थ होता है। क्या माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से हो जाए? नहीं चाहते, और न जानते वो नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अकेले अपने कर्मों को लेकर आया है। आप जन्म से अंधा हैं, इसके पीछे आपका कर्म है। अक्रूर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, दसम स्कंद के 49वें अध्याय में हस्तिनापुर में गए हैं और समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। ये कह प्रसूयते जंतु, अभी देखिए आप अपने अकेले अकेले कर्मों का फल भोग रहे हैं ना, जन्म से ही अंधा है। एक एव प्रलियते, एक अकेले मरेंगे, एको न भुक्ते सुकृतम, अकेले अपने अच्छे कर्मों का फल जीव भोगता है। एक एवं च दुष्कृतम, अपने बुरे कर्मों का फल भी जीव अकेले भोगता है। आप जो पुत्र मोह में पांडवों का अपमान कर रहे हैं युधिष्ठिर आदि का, इसका भी रिजल्ट तैयार होगा और इसके लिए आपको भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत कठिन उपदेश कर रहे हैं। तो कह रहा है धृतराष्ट्र की, जाने दो अक्रूर, माथा पीछे मत करो, जो होना है होगा। तुम्हारा उपदेश तो मुझे ऐसे प्रभावित कर रहा है जैसे सौदा मणि, आकाश में चमकने वाली बिजली कोई स्फटिक मणि पर या शीशा पर पड़ जाए तो कितना प्रकाश देगा, बहुत चक प्रकाश देगा, लेकिन वो रुकता कितना देर तक है? चमकता तो बहुत तेज है लेकिन ठहरता नहीं है। उसी प्रकार आपका ज्ञान हमारे पुत्र मोह से ग्रसित हृदय पर बहुत जोर से असर करता है लेकिन ठीक नहीं रहा है। क्षमा करो, मुझे जैसे रह रहा हूं ऐसे रहने दो, प्रवचन मत करो, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक नहीं पा रहा है। जब सारे पुत्र मर गए तब विदुर जी समझा दिए, कुत्ते की तरह जीवन जीने में शर्म नहीं आती है? जिन पांडवों को मारने के लिए दिन रात योजना बनाते थे उनके दिए हुए अन्न खा रहे हैं। जिस भीमसेन ने आपके एक एक नहीं सौ सौ पुत्रों को मारा, वही भीमसेन के हाथ से रोटी खा रहे हैं? बेशर्म कुत्ता कहीं का। जब डांटे विदुर जी तब समझ में आया सब खोने के बाद। तो इस तरह व्यक्ति नहीं समझ पाता है अज्ञान के कारण और दुख भोगता है। तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय में भगवान कपिल का उपदेश है, जीव के अज्ञान का परिणाम किस तरह से वह दुर्गति भोगता है, कर्म विपाक, अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। और फिर एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में चमस जी उपदेश किए हैं, भजन नहीं करने वालों की गति का वर्णन, कर्म विपाक का वर्णन। और 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में 3:30, 5:26 नरक का वर्णन और एकादश स्कंद के फिर 5वां अध्याय। इसमें कैसे जीव अज्ञान में पड़ता है और अज्ञान के कारण वो नारकीय जतनाओं को भोगता है, वह स्वयं व्यक्तिगत अपने कर्मों का दायित्व उत्तरदायी है, कोई दूसरा नहीं। इसी बात को श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं और बड़ी करुणा में भर कर कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, भागवत के श्लोक है। जब व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता रहता है बार बार, इस जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट पाता, तो उसका व्यक्तिगत दोष है। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, भवबंधन से छूट जाएं। भगवत गीता में भगवान उपदेश किए हैं, प्रभुपाद उधर इंगित करते हैं, मामे उजे प्रपद्यन्ते माया में तम थरन्थिते, जो हमारे शरण में आकर हमारा भजन करता है वो माया के बंधन से छूट जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। देखिये प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं में, प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे थे तो उनके साथी कहते हैं कि प्रहलाद आखिर तुम इस तरह बातें कर रहे हो तो शरीर चलाने के लिए कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा ना, कह रहे हो कि केवल भजन करना चाहिए बचपन से ही। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसके लिए चिंता करना ही नहीं है, यह हमारे टेंशन का विषय नहीं है, हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए कैसे शरीर चलेगा, ये अपने आप चलता है। देखिए यहाँ कहते हैं कि ईश्वर प्रिय आत्मा और सुहृद कृष्ण हैं, उनका भजन करना चाहिए, लेकिन शरीर चलाने के लिए तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। खाने पीने के लिए शरीर रहेगा तभी तो भजन करेंगे। कहते हैं सुखम ऐंदिकम दैत्या देह जोगे न देहि नाम सर्वत लभते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। जब देह मिला है तो उसके कर्म फल का स्टॉक भी है, वो देह चलेगा, जितना दिन फिक्स है उतना दिन चलने का जुगाड़ भी है, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। जैसे बिना प्रयास के दुख मिलता है वैसे बिना प्रयास के सुख भी मिलेगा। कहते हैं देह जोगे न देहि नाम सर्वत लभते दैवाद, दैवाद माने अपने कर्मों के फल से मिलेगा, जथा दुखम अयत्नतः जैसे बिना यत्न के बिना यत्न के दुख मिलता है वैसे सुख भी मिलेगा। कोई यह सोचता है कि बहुत दिन ठीक ठाक रहा, थोड़ा मलेरिया हो जाता, बहुत दिनों से सिर ठीक है, थोड़ा सिर में दर्द हो जाता, पेट में दर्द हो जाता, ऐसा तो कोई नहीं सोचता, फिर भी होता है, बल्कि प्रयास करते हैं कि दुख ना हो तब भी आता है, तो इसका मतलब कि वो फिक्स है, वो आएगा, वैसे सुख भी आएगा। इसके लिए प्रयास नहीं करना है। प्रयास किसके लिए करना है? तत्प्रयासो न कर्तव्य, इसके लिए प्रयास करना ही नहीं है। जतः आयु व्ययः परम, इससे तो केवल जीवन का अमूल्य समय बर्बाद होता है। न तथा बिंदते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्, जीव को तब तक कल्याण नहीं है जब तक वह मुकुंद का चरण कमल न प्राप्त करे, इसके लिए प्रयास करना है। नाम लेने से भक्ति करने से कृष्ण प्रेम मिलता है। हम लोग रोज सुबह कृष्ण प्रेम अपना जीवन का लक्ष्य बतलाते हैं, लेकिन वह कृष्ण प्रेम प्रयास से मिलेगा। जत्न आग्रह बिना भक्ति ना जनवाए प्रेम, जत्न और आग्रह करना पड़ेगा तब प्रेम प्राप्त होगा। हमारा लक्ष्य प्रेम है, हमारा लक्ष्य प्रेम है, ऐसे कहने से नहीं मिलेगा, इसके लिए जत्न आग्रह करना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण हो सकता है। न तथा बिंदते क्षेमम, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरे कामों के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए, जीवन चलाने के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। तत् प्रयासो न कर्तव्य, तो अद्भुत प्रवचन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। और उसके परिणाम भी बतलाते हैं कि व्यक्ति कर्मों के साथ फंस जाता है, कर्म फंसावट है, उसमें फिविकोल है, कर्म प्रारंभ किया कि फंसा। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए अनासक्त भाव से, जितना से काम चल सके उतना करना चाहिए। होता ही है, यह है कर्म वासना व्यक्ति को कर्म के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कर्म और कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हैं, यही भगवान जमराज बतलाना चाहते हैं कि आप लोग शरीर में आसक्त मत होइए, भगवान की भक्ति कीजिए, आत्मा के रहस्य को समझिए, देह के मरने जीने में हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब सिद्धांतों को निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए। और एक बहुत बड़े भागवत आचार्य का प्रवचन है जमराज के रूप में, भले वो माइक का काम हिरण्यकश्यपु कर रहा है, लेकिन सिद्धांत तो जमराज का है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से समझना चाहिए और इसके अनुरूप अपने मति को कृष्ण में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। हमें जाना है इसलिए हम जल्दी बंद किए। जिज्ञासा नहीं है ना, एक दो मिनट की जिज्ञासा हो तो मतलब
हरे कृष्ण Maharaj, you said that Hiranyakashipu is acting like the mic and the actual pravachan is of Yamaraj. Like we also say that Harikatha, when it is spoken by Avaishnava, Avaishnava Mukodgirtam, it should not be. So, how to understand this?
देखिए वास्तव में वो अवैष्णव नहीं है, यहाँ तो वैष्णव का रोल तो किया ही है, लेकिन भागवत में उसका प्रवचन हम लोगों के लिए रखा गया है। और यह आपका सिद्धांत ठीक है कि वैष्णव के मुख से कथा घातक हो जाती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट भगवान जमराज की बातें कह रहा है, तो भगवान जमराज तो अवैष्णव नहीं है ना, वो भी अवैष्णव नहीं है, लेकिन विषय भोगने के कारण वैष्णवता से गिर गया है, बहुत बड़ा असत हो गया है, तो और कुछ बातें कहे वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भगवान जमराज की बात है, इसलिए हमारे लिए रखा गया है। एक बार एक व्यक्ति प्रश्न किया था महाराज श्री से कि कंस को समझाने का कोशिश वसुदेव जी किए, देवकी का जब चोटी पकड़ा था, तलवार निकाल कर काट रहा था, लेकिन वो समझा नहीं उनके प्रवचनों से, वो नहीं समझा, चाहे कुछ भी दें आत्मा का अंतर बतलाए, नहीं समझा। मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाद सतानते व मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, बहुत लंबा प्रवचन किया, किसी प्रवचन का असर वसुदेव जी के प्रवचन का असर कंस पर नहीं हुआ। लास्ट में जब वो वचन दिए कि हम पुत्रों को दूंगा तब छोड़ा। तो एक व्यक्ति प्रश्न किया कि जब वो नहीं समझा तो उन प्रवचनों को यहाँ भागवत में रखने की जरूरत क्या है, जब वो असरदार है ही नहीं, वो कंस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु प्रवचन कर रहा है अपने परिवार के लोगों को समझाने के लिए, खुद नहीं समझा, वो क्या प्रवचन करेगा, वो खुद ही भगवान से बैर बांध लिया उसी हिरण्याक्ष के कारण। अपने परिवार वालों को तो ऐसी बातें समझा रहा है और स्वयं तैयारी करता है भगवान से झगड़ा करने का, तो ऐसे बातों को भागवत में रखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ भागवत में न हिरण्यकश्यपु के परिवार वालों के लिए रखा गया है, न हिरण्यकश्यपु के लिए रखा गया है, न कंस के लिए रखा गया है, भागवत के सिद्धांत हमारे लिए उपादेय है, हमारे लिए रखा गया है, तो हमारे हित में है, इसलिए इसको उचित समझकर व्यास देव ने इसको रखा है। सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी इसको रखे हैं, सिलेक्टेड चीज जो हमारे हित का है। सारे भाग शास्त्रों का सार है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू भाव का। तो ये हमारे हित में है इसलिए रखा गया है। अब हम इस मानसिकता से इसको सुने कि हिरण्यकश्यपु वैष्णव है तो ये तो उचित नहीं होगा, इससे हमारा हित हो सकता है इसलिए रखा गया है। और हर सिद्धांत का कुछ न कुछ अपवाद होता है, आखिर व्यास देव सुखदेव गोस्वामी इसको रखे हैं तो निश्चित रूप से उस सिद्धांत का अपवाद है, यह वैष्णव के मुख से निकले हुए प्रवचन घातक होता है। तो इस रूप में न लेकर अनुकूल रूप में लेना चाहिए कि हमारे हित के लिए भागवत है, जब भागवत में आ गया तो निश्चित रूप से इससे हमारा हित होगा, हमारे लिए अहितकर नहीं है, अनुकूल भाव से लेना चाहिए। हरे कृष्णा।